नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बेथ स्क्वारेके की जेनेटिक्स 101 आम पाठकों के लिए लिखी गई लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक है। इसका उद्देश्य जीनों को रहस्यमय या केवल प्रयोगशाला तक सीमित विषय मानने के बजाय रोजमर्रा के स्वास्थ्य, परिवार, पहचान और सार्वजनिक बहसों से जुड़ी वास्तविक अवधारणाओं के रूप में समझाना है। पुस्तक बुनियादी रसायन और कोशिका जीव विज्ञान से आरंभ करती है, फिर डीएनए की संरचना, क्रोमोसोम, जीन की अभिव्यक्ति, वंशागति और मेंडल के प्रयोगों तक पहुंचती है। इसके बाद यह आधुनिक प्रश्नों जैसे आनुवंशिक परीक्षण, वंशावली, नस्ल और जातीयता, कैंसर, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, क्लोनिंग और जीन संपादन की पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है। स्क्वारे की स्वयं विज्ञान लेखिका और जीव विज्ञान शिक्षण अनुभव रखने वाली लेखिका है, इसलिए उनका दृष्टिकोण पाठ्य पुस्तक की शब्दावली को समाचार, चिकित्सा रिपोर्टों और उपभोक्ता डीएनए परीक्षणों को समझने लायक संदर्भ में बदलता है। यह विशेषज्ञों के लिए उन्नत संदर्भ ग्रंथ नहीं, बल्कि आनुवंशिकी के दावों को सावधानी से पढ़ने के लिए एक सुलभ आधार है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डीएनए से जीन अभिव्यक्ति तक सूचना को जैविक कार्य में बदलने की प्रक्रिया। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह जीन को किसी व्यक्ति का पूर्ण भाग्य बताने वाला एकल निर्देश नहीं मानती। स्क्वारे की बुनियादी स्तर पर परमाणु, अणु, कोशिकाओं और डीएनए के संबंध से शुरुआत करती है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना महत्वपूर्ण है, पर उसका अर्थ केवल सीढ़ीनुमा आकार नहीं है। उसमें मौजूद रासायनिक अनुक्रम जैविक सूचना को संग्रहित करता है। कोशिका इस सूचना का उपयोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से करती है, जिनसे प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन शरीर की संरचना, संकेत व्यवस्था और अनेक कार्यों में भाग लेते हैं। यह क्रम समझने पर पाठक जीन, डीएनए और प्रोटीन को एक ही चीज मानने की सामान्य भूल से बच सकता है। पुस्तक का शिक्षण क्रम उपयोगी है, क्योंकि पहले कोशिका के भीतर सूचना के प्रवाह को समझाया जाता है, फिर वंशागति के परिणामों पर चर्चा होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी गुण की व्याख्या में जीनों की भूमिका हो सकती है, लेकिन परिणाम कोशिकीय नियंत्रण अनेक जीनों और पर्यावरणीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। आधुनिक आनुवंशिक समाचारों को समझने के लिए यह आधार अनिवार्य है। दूसरा, मेंडलीय वंशागति को सरल नियम नहीं, जैविक पैटर्न पढ़ने के उपकरण के रूप में समझना। पुस्तक में ग्रेगर मेंडल का स्थान केवल ऐतिहासिक श्रद्धांजलि का नहीं है। मटर के पौधों से दिखने वाले वंशागति पैटर्न यह समझाने का माध्यम है कि माता पिता से मिलने वाली आनुवंशिक प्रतियां संतान के गुणों को कैसे प्रभावित कर सकती है। प्रभुत्व और अप्रभुत्व की भाषा कुछ परिस्थितियों में उपयोगी मॉडल देती है, विशेषकर उन गुणों या रोगों के लिए जिनमें एक जीन का प्रभाव अपेक्षाकृत स्पष्ट हो। लेकिन पुस्तक का व्यापक संदर्भ पाठक को इस मॉडल की सीमा भी समझने में मदद करता है। अधिकांश मानवीय लक्षण, स्वास्थ्य जोखिम और शारीरिक विशेषताएं किसी एक सरल जीन नियम से तय नहीं होते। कई जीन, उनके पारस्परिक प्रभाव और गैर आनुवंशिक स्थितियां परिणाम बदल सकती हैं। इसलिए परिवार में किसी लक्षण का दिखाई देना अपने आप में निश्चित भविष्यवाणी नहीं बन जाता। यह अंतर डीएनए परीक्षणों के परिणाम पढ़ते समय विशेष रूप से आवश्यक है। किसी जीन प्रकार का संबंध जोखिम से हो सकता है, पर संबंध कारण निश्चितता या निदान के बराबर नहीं होता। पुस्तक की यह बुनियादी शिक्षा आनुवंशिकी को अति सरलीकृत वंश वृक्षों से आगे ले जाकर संभाव्यता और प्रमाण की भाषा में रखती है। तीसरा, डीएनए परीक्षण। वंशावली और पहचान के दावों की उपयोगिता तथा सीमाएं। उपभोक्ता डीएनए परीक्षणों ने आनुवंशिकी को निजी निर्णयों और पारिवारिक जिज्ञासा का हिस्सा बना दिया है। पुस्तक इस संदर्भ में ऐसे परीक्षणों को समझने के लिए आवश्यक ढांचा देती है। डीएनए से जैविक रिश्तेदारी, कुछ वंशानुगत रूपों और स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन रिपोर्ट को अंतिम व्यक्तिगत सत्य समझना उचित नहीं है। विशेषकर वंश या जातीयता के अनुमान संदर्भ समूहों, सांख्यिकीय तुलना और कंपनियों की व्याख्या पद्धतियों पर निर्भर करते हैं। वे मानव पहचान की पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक या ऐतिहासिक कहानी नहीं बता सकते। पुस्तक नस्ल, जातीयता और वंश के आधुनिक संबंधों को उठाकर यह जरूरी भेद सामने लाती है कि सामाजिक श्रेणियां और आनुवंशिक विविधता एक जैसी चीजें नहीं है। मनुष्यों में विविधता वास्तविक है, पर उसे कठोर जैविक नस्लों में बांटना वैज्ञानिक रूप से सीमित दृष्टि है। स्वास्थ्य परीक्षणों के मामले में भी जोखिम संकेत और चिकित्सा निष्कर्ष अलग हैं। पारिवारिक इतिहास, लक्षण और योग्य चिकित्सकीय सलाह का स्थान केवल एक रिपोर्ट नहीं ले सकती। इस तरह पुस्तक परीक्षणों को खारिज नहीं करती, बल्कि उनके प्रमाण, दायरे और अनिश्चितता को पहचानने की वैज्ञानिक आदत विकसित करती है। चौथा, कैंसर आनुवंशिकी में उत्परिवर्तन जोखिम और शरीर की कोशिकाओं के बदलाव कैंसर आनुवंशिकी पुस्तक के आधुनिक और व्यावहारिक विषयों में है, क्योंकि यह दिखाती है कि जीनों पर चर्चा केवल विरासत में मिलने वाले लक्षणों तक सीमित नहीं है। शरीर की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है और इस दौरान डीएनए में बदलाव या उत्परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ बदलाव कोशिका वृद्धि और नियंत्रण से जुड़े तंत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कैंसर के संदर्भ में आनुवंशिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है। फिर भी यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि हर कैंसर सीधे माता पिता से विरासत में मिला होता है या हर आनुवंशिक बदलाव से कैंसर होना निश्चित है। आनुवंशिक जोखिम कोशिकाओं में जीवन के दौरान बने परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच अंतर करना आवश्यक है। पुस्तक का परिचयात्मक ढांचा पाठक को यही भेद समझने देता है। चिकित्सा समाचारों में जीन आधारित कैंसर जोखिम स्क्रीनिंग या लक्षित उपचार के उल्लेख को तभी ठीक से पढ़ा जा सकता है जब जोखिम और निदान को अलग रखा जाए। यह विषय आनुवंशिकी की मानवीय उपयोगिता भी दिखाता है, लेकिन साथ ही सावधान करता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के लिए लोकप्रिय विज्ञान की जानकारी पेशेवर चिकित्सकीय मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। मंत में जीएम फसलें क्लोनिंग और जीन संपादन में विज्ञान के साथ सामाजिक निर्णय पुस्तक आनुवंशिकी को प्रयोगशाला की तकनीक के रूप में समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके सार्वजनिक परिणामों तक ले जाती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें क्लोनिंग और जीन संपादन अलग तकनीकी विषय है, इसलिए उन्हें एक ही भय या एक ही समाधान के रूप में देखना भ्रामक है। जीएम फसलों के प्रश्न में यह जानना जरूरी है कि किस गुण में बदलाव किया गया, उसका परीक्षण कैसे हुआ और लाभ तथा संभावित जोखिम किस संदर्भ में आके जा रहे हैं। क्लोनिंग के संदर्भ में किसी जीव की आनुवंशिक समानता का अर्थ समान अनुभव, व्यक्तित्व या जीवन परिणाम नहीं होता, क्योंकि विकास और परिवेश भी निर्णायक हैं। जीन संपादन अधिक प्रत्यक्ष रूप से डीएनए अनुक्रम बदलने की संभावना खोलता है, इसलिए इसके चिकित्सा उपयोग सुरक्षा पहुंच और भावी पीढ़ियों पर प्रभाव जैसे प्रश्न उठते हैं। स्क्वारकी की पुस्तक का मूल्य इस बात में है कि वह तकनीकी शब्दों के पीछे छिपी मूल जीव विज्ञान को पहले स्पष्ट करती है, तब पाठक नीति कृषि चिकित्सा और नैतिकता की बहसों में प्रमाण आधारित प्रश्न पूछ सकता है। विज्ञान यह बता सकता है कि कोई हस्तक्षेप कैसे काम करता है, लेकिन यह अपने आप तय नहीं करता कि उसका उपयोग कब किसके लिए और किन नियमों के साथ होना चाहिए। निष्कर्ष में जेनेटिक्स 101 उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें स्कूल स्तर की कुछ जीव विज्ञान याद हो सकती है, पर डीएनए वंशागति और आधुनिक जीन तकनीकों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य पत्रकारिता पारिवारिक वंशावली उपभोक्ता डीएनए किट कैंसर जोखिम या जीन संपादन से जुड़ी खबरें पढ़ने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ मिल सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी परीक्षण रिपोर्ट का चिकित्सकीय निष्कर्ष निकालना नहीं, बल्कि उसके दावों को सही प्रश्नों के साथ देखना है। पाठक जीन प्रोटीन उत्परिवर्तन जोखिम और वंश के बीच जरूरी अंतर समझ सकता है। बौद्धिक स्तर पर इसका महत्व आनुवंशिकी के दो लोकप्रिय अतियों से बचाने में है। पहली अति यह है कि जीन सब कुछ तय करते हैं, दूसरी यह कि आनुवंशिक जानकारी का कोई अर्थ ही नहीं है। पुस्तक इनके बीच प्रमाण आधारित दृष्टि रखती है। समान श्रेणी की कई शुरुआती पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता विषयों की व्यापकता है। यह कोशिका जीव विज्ञान और मेंडलीय वंशागति से शुरू होकर नस्ल जातीयता निजी परीक्षण कैंसर जीएम फसलें और जीन संपादन तक जाती है। लेखिका का घोषित लक्ष्य पाठ्य पुस्तक की अनावश्यक बोझिलता हटाकर उपयोगी वैज्ञानिक आधार देना है, इसलिए यह गहन विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम का विकल्प नहीं है, लेकिन समकालीन आनुवंशिक दावों को समझने के लिए सुव्यवस्थित संतुलित और सुलभ प्रवेश बिंदु है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं बेथ स्क्वायरकी की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।